रात्रि 3 पहर व्यतीत हो चुकी थी। दिन भर आशंकित, आतंकित और व्यग्र रहकर सांगल नगरी भी अंधकार, मौन और निद्रा के आच्छादन से विश्राम पा रही थी। केवल नगर प्राचीर और गोपुरों से प्रतिहारी सैनिकों की सावधान रहने की ललकारें कुछ कुछ पलों के अंतर से अंधकार से घनीभूत मौन को स्पंदित कर देती। पथों और वीथियों पर सहस्त्र मौन परंतु सतर्क सैनिक पहरा दे रहे थे। मध्यरात्रि के पश्चात किसी अज्ञात कुलशील के अथवा संदिग्ध अवस्था में किसी भी व्यक्ति के पाए जाने पर उसे राजपुरुषों के सम्मुख उपस्थित किए जाने का आदेश था। इस व्यवस्था के कारण सांगल के मध्य पड़ों में और वेश्याओं की वीथियों में अर्धरात्रि के 1 पहर पश्चात तक रहने वाला कोलाहल व्यापार संध्या से ही समाप्त हो जाता। नागी नगर प्राचीर के अतिरिक्त कहीं प्रकाश और आहट थी तो गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के प्रसाद के सिंह द्वार पर अलसाय सारथी, अश्वरक्षक और अनुचर जमहाइया लेकर निरर्थक वार्तालाप से निद्रा का प्रतिकार कर रहे थे। शांत अश्व सिंहदार के सन्मुख शिला मंडित भूमि पर अपने सूम पटक पटक कर श्रांति और असंतोष प्रकट कर रहे थे। अनेक अभ्यागत रात्रि का प्रहर बीत जाने पर और कुछ दूसरे प्रहर के अंत में विदा हो चुके थे। अनुचरों और अश्वों की दृष्टि प्रतीक्षा में बार बार सिंह द्वार की ओर जाकर निराश लौट आती। वे दुविधा में थे, उनके स्वामी उन्हें भूल गए या स्वयं अपने को ही भूल गए हैं। इससे पूर्व भी अनेक बार कई पहर रात बीते तक अनेक प्रसादों के सिंह द्वारों पर उन्होंने अपने स्वामियों के लिए प्रतीक्षा की थी, परंतु यह अवसर और वातावरण भिन्न था। आज न नर्तकियों के पायल, न मृदंग की गमक, न गीत की लय, न अट्ठास, न कलरव, न मद्य और न खाद्य पदार्थों की सुगंध थी। उसकी सुध लेकर भीतर से किसी ने मद्य और मेरे के पात्र न भेजे थे। द्वार पर खड़े 5 सतर्क सहस्त्र प्रतिहारी अन्य समय की भांति केवल शोभा के लिए जान न पड़ते थे। प्रतिहारियों की आशंकामय तत्परता सारथियों और अनुचरों की प्रतीक्षा को दुसह बना रही थी। सिंह द्वार के भांति अस्थानागार के आलिंद में भी दीपदंडधारियों के स्थान पर सहस्त्र प्रहरी तत्पर थे। दीपों का प्रकाश केवल अस्थानागार में ही था। अनेक अभ्यागतों से घिरे अत्यंत चिंतातुर आचार्य प्रवर्धन के समीप काष्ठ मूर्ति के समान निश्चल गिरवा झुकाए आर्य रुधिर बैठे थे। उनके चारों ओर सामंत कार्तवीर, सामंत लक्ष्मण, श्रेष्ठ धर्मजीत, सार्थवाहक बलभद्र, महासामंत धर्मस्थ के पुत्र पंडित विष्णु शर्मा और पौत्र विनय शर्मा आदि भी वैसे ही चिंतातुर मुद्रा में उपाधानों के सहारे प्राय ग्रीवा झुकाए बैठे थे। आलिंद में प्रतिहारी ने रात्रि का तीसरा पहर समाप्त होने का घड़ियाल बजा दिया। घड़ियाल के स्वर से समय का विचार कर पंडित विष्णु शर्मा ने उपाधान का आश्रय छोड़कर सामंत कार्तवीर का संबोधन किया। महासेनापति के सहसा जागरूक होकर परिषद का आह्वान करने और नगर में घोषणा करने से जो आशंका हुई थी वह यूं पूर्ण हुई। उन्होंने चिंता से माथा झुकाए आचार्य की ओर दृष्टि की। आचार्य ने केवल एक दीर्घ निश्वास लिया। अन्य उपस्थित समाज भी विष्णु शर्मा की भांति उपधान छोड़कर मतामत प्रकट करने के लिए शरीर हिलाने डुलाने लगे। मुख से न कहने पर सभी ओर से विलंब के कारण चिंता प्रकट हो रही थी। अंतःपुर के कंचुकी ने सूचित किया, कुल देवियां पधार रही हैं। अभ्यागत देवियां अंतःपुर से आकर अपने संबंधी पुरुष के समीप बैठ गई। जमहाई रोकने के लिए स्थूल शरीर को सीधा कर सामंत कार्तवीर ने उत्तर दिया, वर्तमान परिस्थिति में प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं। महासेनापति और धर्मस्थ केवल शिखंडी हैं, कुटिल नीतियों के के यह बाण सामंत उक्रेश इंद्रसेन और सारथी प्रेस्त के ही हैं। हमारे सभी बालाधिकृतों और सेनापतियों के स्थान पर अन्य बालाधिकृत और सेनापति पहले से नियत कर और घोषणा द्वारा जन को लुभा कर इन लोगों ने हमें पंगु कर दिया है। कुचक्र में प्रेस्थ कौटिल्य का शिष्य है। प्रातः सारथीपुत्र भी निश्चय बालाधिकृत क्या सेनापति के पद पर शोभायमान होगा। यह न्याय उसी की भूमिका है। प्रसंग के मध्य में ही विष्णु शर्मा ने रुद्रधीर को संबोधन किया। तात उचित यही होगा कि सूर्योदय से पूर्व तुम नगर द्वार पर पहुंचकर द्वार खुलते ही पूर्व दिशा का मार्ग ग्रहण करो। मेरा विचार है कि प्रवास का समय तुम अपने मातुल गृह वल्का में ही पूर्ण करो। गण के दूसरे नगरों की यात्रा कर परिस्थिति जानो। कुछ पक्ष अथवा कुछ मास पश्चात ही इन हीन कुलों नास्तिकों का दमन हो जाने से तुम्हारे सागल लौट आने का अवसर आ सकता है। भावों को सतत रखने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर बांधे गिरवा झुकाए आचार्य को असुकृति से सिर हिलाते देखकर विष्णु शर्मा चुप हो गए। गिरवा झुकाए ही आचार्य ने अवसाद से छीण स्वर में कहा, मेरा मत है 2 सहस्त्र दिवस के दीर्घ समय का उपयोग आयुष्मान रुद्रधीर मगध की यात्रा द्वारा करें। मद्र अभी कुछ समय तक प्रेस्त और उसके मलेच्छ दल के कुचक्र में पीड़ित हो विवश रहेगा। ऐसी स्थिति में वल्का जैसी आरक्षित नगरी में आयुष्मान के किसी षड्यंत्र में फंस जाने पर हम कुछ जान भी न पाएंगे। मेरा शरीर उदर रोग से अत्यंत जीर्ण हो रहा है। मेरी इच्छा है कि रुद्र मगध में द्विज सेनापति और अग्रमुख नेतज्ञ महर्षि पत्यांजलि से वर्णाश्रम के उद्धार के लिए दीक्षा ग्रहण करे। मद्र सदा मलेच्छ शासित न रहेगा, वे अधिक बोल न पाए। श्रेष्ठ धर्मजीत पुनः उपाधान का आश्रय लेकर बोला, तात धर्मस्थ ने यह अद्भुत न्याय किया है। मधु पर्व की घटना तो प्राय विस्मित हो चुकी थी। सामंत कार्तवीर आगे बढ़कर बोला, वही तो मैं कह रहा था। सामंत लक्ष्मण ने श्रेष्ठ के मुख का प्रसंग लेकर कहा, यह मधु पर्व की घटना का परिणाम नहीं, यह युद्ध काल की राजनीति है। इसके मूल में तात धर्मस्थ कि मिलिंदकालीन शासन व्यवस्था में आस्था है। यवन गणपति में उनका विश्वास है। विशेषतः यह अनुशासन दंड है। मित्र, गणपति की यह घोषणा कि मद्र की संपूर्ण प्रजा गण और न्याय के शासन के सम्मुख समान है, इसका प्रमाण है। यह जन को वश विष्णु शर्मा की ओर देखकर वे मौन रह गए। विष्णु शर्मा उत्तेजित नहीं हुए। वे बोले, नहीं तात, स्वयं अभिधर्म और मुंडियों की कर्मण्यो द्विज भवती की धारणा का आदर करते हैं। इस वृद्धावस्था में उनके विचारों का क्या हो। सार्थवाहक बलभद्र जमहाई से फैलते मुख को हाथ से ढककर बोला, आयुष्मान के मगध जाने के संबंध में आचार्य का मत उचित है। मार्ग के सभी नगरों में मेरा परिचय है। सब प्रबंध हो जाएगा। आयुष्मान की यात्रा में कष्ट न होगा। मगध जाकर ही वे मध्य की मुक्ति का उपाय कर सकेंगे। हमारी आशा केवल मंत्र अभिषिक्त मगध सेनापति पुष्य मित्र है। आचार्य को पुनः गिरवा झुकाए सिर हिलाते देख सभी लोग मौन हो उनकी ओर देखने लगे। द्विज सेनापति, उन्होंने कहा, समय की न्यूनता से इस समय हम उनसे सहायता नहीं पा सके। द्विज सेनापति के भरोसे प्रतीक्षा करना उचित न हुआ। समय निकल गया। सेनापति पुष्यमित्र की सहायता पाने के स्थान पर हम मलेच्छों के कुचक्र में फंस गए। सेनापति सूरसेन से रवि शर्मा को सैन्य दल भेजने का आदेश दे सकते थे। वे संभवतः दक्षिणापथ की प्रतिद्वंद्विता में व्यग्र हैं। उनकी दृष्टि में जम्मूद्वीप की सीमा संभवतः केवल सूरसेन ही है। मध्य की रक्षा के लिए गणपति की इस नीति का परिणाम होगा कुलों की सत्ता का पराभव, कुलहीनों का स्वेच्छाचार, शासन की व्यवस्था से हीन देश रक्षक हीन खेत के समान हो जाएगा। एक गहरा निश्वास लेकर दृष्टि किसी की ओर भी न कर सभी को संबोधन कर आचार्य ने अभ्यागतों की सहानुभूति के लिए धन्यवाद देकर विलंब हो जाने के कारण अभ्यागतों से विश्राम के लिए अपने स्थान पर लौट जाने की प्रार्थना की। वे विस्तर से उठ खड़े हुए। उनके अनुकरण से अभ्यागत और कुलस्त्रियां भी आसनों से उठ खड़ी हुई। मन की अधीरता के कारण कंठ और नेत्र आर्द हो जाने से आचार्य मुख से कुछ न बोल केवल बद्ध करो से अभ्यागतों की वंदना कर अंतःपुर के द्वार की ओर चले गए। रुद्रधीर के नेत्र आरक्त और मुख प्रस्तर मूर्ति की भांति गंभीर था। गुरुजन को प्रणाम कर वे लोग खड़े रहे। कुलदेवियों ने क्रमशः आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद तिलक कर मंगल कामना सूचक नारियल भेंट किए और एक एक स्वर्ण मुद्रा रुद्रधीर के सिर से निछावर कर पुरोहित को दान के लिए पात्र में डाल दी। गुरुजन उन्हें दीर्घायु सफल काम और यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर दीप दंडधारी दासी द्वारा दिखाए मार्ग से देवियों सहित सिंह द्वार की ओर चले गए। गुरुजन के प्रस्थान के पश्चात चारों मित्र आयुष्मान सुकिद इंद्रदीप विनय शर्मा और वलजीत यथेष्ट विश्राम की मुद्रा में रुद्रधीर के चारों ओर घेर कर बैठ गए। रुद्रधीर का अनुज वसुधीर ज्येष्ठ और ज्येष्ठ के मित्रों के प्रति आदर से एक ओर बैठा था। इंद्रदीप ने जमहाई लेकर वसुधीर को अपानक के लिए संबोधन किया। रुद्रधीर कोहनी उपाधान पर टिका हथेली पर माथा टिकाए था। धर्मस्थान से लौटकर रात्रि तीन पहर बीत जाने तक उसके मुख से एक शब्द न निकल पाया था। उसके मुख के शब्द मन में धधकती हुई अपमान की प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए थे। धर्मस्थान से दासपुत्र के अपमान के लिए एक सहस्त्र दिवस का निर्वासन दंड सुनकर वह न्याय और शासन की मर्यादा भूल गया था। उसके नेत्र आरक्त हो गए थे और हाथ खड़ग के लिए कटिबंध की ओर बढ़ गया, परंतु धर्मस्थान के अनुशासन के अनुसार धर्मस्थान की सीमा में राजपुरुषों के अतिरिक्त वादी प्रतिवादी अथवा इतर जन को शस्त्र उपस्थित होना वर्जित था, इसलिए उसका हाथ शास्त्र न पा सका। मार्ग अवरुद्ध पाकर उसका क्षोभ और उत्तेजना उमड़ पड़ी। महावृद्ध महापंडित धर्मस्थ के सम्मुख अवज्ञा से सिर उठाकर धर्मस्थ के नेत्रों में देखकर उसने प्रश्न किया, क्या मध्य के कुलगण का शासन दासों की प्रतिष्ठा के लिए है? हिम श्वेत समिश्रु से आच्छादित धर्मस्थ का मुखमंडल युवक की इस धृष्टता से विचलित न हुआ। उत्तर में श्वेत समिश्रु आच्छादित ऊठ एक बार और हिले। गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान रुद्रधीर को महाश्रेष्ठी प्रेस्थ के पुत्र आयुष्मान पृथ्वीसेन का सार्वजनिक अपमान करने के दंड स्वरूप धर्मस्थान से अनुशासित सागल नगर से एक सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड के अतिरिक्त मध्यगण के धर्मस्थान के अनुशासन की अवज्ञा करने के अपराध में मध्यगण का धर्मस्थान एक और सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड की आज्ञा देता है। धर्मस्थान का वातावरण अस्तभ्य रह गया। धर्मस्थ ने पुनः आदेश दिया, गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पद और कुल के सम्मान के विचार से एक रात्रि और एक दिवस का समय आयुष्मान रुद्रधीर को स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार करने के लिए दिया जाए। इसके अनंतर राज पुरुष आयुष्मान को बाधित करें। आयुष्मान इंद्रदीप सुकद विनय शर्मा बलजीत तथा अन्य अभिजात युवकों ने रुद्रधीर के धर्मस्थान से निकलते ही उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। युवक उससे बलात् स्यूका पर बैठा कर स्यूका को अपने कंधों पर आचार्य के प्रसाद तक ले गए। अपने वर्ण और कुल का अपमान सहकर धर्मस्थान से जीवित लौट आना रुद्रधीर के लिए मृत्यु पीड़ा से अधिक असहाय हुआ। वह निरंतर आत्महत्या और पृथ्वीसेन की हत्या की ही बात सोचता रहा। सुरा को दो चषक पीकर रुद्रधीर का हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर इंद्रदीप ने कहा, मित्र मनुष्य देवताओं की इच्छा का दास है। देवता अपने प्रयोजन से मनुष्य की मति से परे कार्य करते हैं। शुद्ध के आदर के लिए ब्राह्मण को निर्वासन का यह दंड ही